सत्यवचन। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। पूछेंगे तब वो धर्मी सब, पूछेंगे तब वो धर्मी सब, हमने ये सब कब किया। तुझको खाना दिया, तुझको पानी दिया, हमने बता कब किया। यीशु कहेगा सच कहता हूँ, यीशु कहेगा सच कहता हूँ। छोटे से छोटे भाई के साथ तुमने जो भी किया, था वो मुझसे किया। हाँ तुमने जो भी किया था वो मुझसे किया। उनको खाना दिया मुझको दिया, उनको पानी दिया मुझको दिया, उनको खाना महिमा मेरा जा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब प्रभु की दया से सुरक्षित और भले चंगे होंगे और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन से सीखने के लिए तैयार होंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले अध्ययन में हमने याकूब और एसाव के मिलन को देखा और फिर याकूब की सुक्कोत यात्रा को देखा। इसके अलावा याकूब के पुत्रों व पुत्री दीना के अशुद्ध होने की बातों को भी देखा। मित्रों, आज हम अध्याय 34 में अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसमें हम याकूब की पुत्री दीना का शकेम द्वारा बलात्कार करना और याकूब के पुत्र शमौन और लेवी द्वारा वहां के पुरुषों का घात करना आदि विषयों पर विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम इन विषयों पर चर्चा करें, आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर अपने जीवन में सच्चाई को ला सकें। प्रभु जी, आप सभी श्रोता भाई बहनों को अपनी शांति और अनुग्रह प्रदान कीजिए, ताकि जो बीमार, दुखी व चिंतित हैं, वे आत्मिक चंगाई को प्राप्त करें। विशेषकर वे जो शारीरिक शोषण के शिकार हैं, उन्हें आप छुटकारा दें और उनकी सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देखते हैं कि याकूब अपने भाई से मिलने के लिए निकला और मिलने के बाद याकूब आगे बढ़ा और शकेम नगर में रुका और वहां पर उसने अपने लिए एक अच्छी भूमि खरीदी जो उपनगरीय क्षेत्र में था। वह उन दिनों की संस्कृति से अपने आप को परिचित कराने की कोशिश कर रहा था। जो भी हो, यह स्थान उतना अच्छा नहीं था और परमेश्वर याकूब को इस क्षेत्र से भी अलग करना चाहते थे। मित्रों, आप मेरा विश्वास कीजिए कि जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि परमेश्वर के लिए अच्छा है कि वह याकूब को यहां से अलग करे। आइए हम उत्पत्ति 34 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, फिर लिया की पुत्री दीना जो याकूब के द्वारा उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों को देखने के लिए बाहर गई। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि दीना इस नगर शकेम में लोगों से मिलने के लिए निकली। तब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 34 अध्याय के दो पद में, जहां लिखा है, तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। मित्रों, मैं इसे समाचार पत्रों की भाषा में आपके सामने रखना चाहता हूं, उसने बलात्कार किया। मित्रों, यदि लोग समाचार पत्रों में और रेडियो पर और टेलीविजन में यह कह सकते हैं, तो निश्चय ही मैं भी यह कह सकता हूं। मित्रों, पाप को खोलकर बताने की आवश्यकता है। एक समय था जब पाप पाप था, परंतु आप लोगों ने पाप से एस हटा दिया और अब आपके पास सिर्फ IN अर्थात इन है और आप IN समूह के सदस्य हैं। यदि ऐसा है तो आप एक पापी हैं, परंतु परमेश्वर पाप का उच्चारण इस रीति से नहीं करते हैं। वह अभी भी SIN सिन पाप कहते हैं। और आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आई शब्द के बिल्कुल मध्य में है और वही स्थान है जहां हम और आप पाए जाते हैं। मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। और वह याकूब की पुत्री दीना पर मोहित हो गया और उसने उस कन्या से प्रेम किया और मीठी मीठी बातें की। अतः शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए मांग ले। मित्रों, यहाँ पर एक रुचिदायक बात यह है कि शकेम स्पष्ट रूप से उस लड़की के साथ प्रेम करने लगा था और उसके साथ विवाह करना चाहता था। तब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 5 से 7 पद में, और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी पुत्री दीना को भ्रष्ट किया है, परंतु उसके पुत्र तो पशुओं के साथ मैदान में थे, इसलिए उनके आने तक वह चुप ही रहा। तब शकेम का पिता हमोर याकूब से बातचीत करने के लिए निकल पड़ा। यह बात सुनते ही याकूब के पुत्र मैदान से लौट आए। ये पुरुष तो बहुत उदास और क्रोधित थे, क्योंकि शकेम ने याकूब की पुत्री को भ्रष्ट करके इसराइल में एक ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया जिसे नहीं करना चाहिए था। मित्रों, हम इस बात से निश्चित रूप से सहमत हैं कि जो कुछ भी किया गया वह नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह हुआ है और अब शकेम उस लड़की से शादी करना चाहता है। मित्रों, जब याकूब ने अपने पुत्री के साथ घटित बातों को सुना तो उसने अपने पुत्रों के आने का इंतजार किया, क्योंकि वे पशुओं के साथ मैदान में थे और जब वे आए तो उन्होंने एक युद्ध की योजना की। मित्रों, मेरा मानना है कि याकूब को संभवतः ऐसा नहीं करना चाहिए था जितना कि उसने किया। जब हमोर जो शकेम का पिता था उससे मिलने आया, तो यह सच था कि वह अपने बेटे के लिए उस लड़की को मांगने आया कि वह उसकी पत्नी हो जाए, और मेरे विचार से याकूब को उसे सौंप देना चाहिए था, क्योंकि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उस समय यही एक सबसे अच्छा तरीका था। परंतु जिस तरह से इसका हल निकाला गया वह निश्चित रूप से एक अच्छा तरीका नहीं था, और परमेश्वर ने भी इसे पसंद नहीं किया, अर्थात मान्यता नहीं दी। हम उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, परंतु हमोर ने उनसे बातचीत करते हुए कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तो तेरी पुत्री पर बहुत लगा है, इसलिए उसके साथ विवाह करने के लिए उसे दे दे और हम आपस में विवाह किया करेंगे। अपनी पुत्रियां हमें दिया करो और हमारी पुत्रियां अपने लिए लिया करो। मित्रों, अंतरजातीय विवाह करना सही नहीं था, फिर भी ऐसे लगता है कि दीना के मामले में उसे शकेम को दे देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से एक बड़े पाप को होने से रोका जा सकता था। यद्यपि यह एक स्पष्ट दृष्टि है और बिना सोचे समझे लिए हुए निर्णय सही नहीं होते हैं। आइए हम उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 10 से 12 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इस प्रकार तुम हमारे साथ बसे रहोगे, यह देश तुम्हारे सामने है, इसमें रहो और व्यापार करो और यहां संपत्ति अर्जित करो। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाए तब जो कुछ भी तुम मुझसे कहोगे वह मैं दूंगा, तुम चाहे कितना भी मूल्य और भेंट क्यों ना मांगो मैं तुम्हारे कहने के अनुसार उसे दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दे दो। मित्रों, ये सारी बातें इस बात को प्रकट करती है कि याकूब को यहां से जाना है, क्योंकि यह स्थान उसके लिए नहीं है कि वह यहां के लोगों के साथ मिलकर इस भूमि में रहे। अब हम उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, परंतु याकूब के पुत्रों ने यह सोचकर कि उसने हमारी बहन दीना को भ्रष्ट किया है, शकेम और उसके पिता को छल पूर्वक उत्तर दिया। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से याकूब ने अपने परिवार में अगुए के स्थान को लिया था। सबसे पहले उसने अपने बेटों को हमोर और शकेम को धोखा देने से रोकना चाहिए था। मित्रों, हम अगले पद उत्पत्ति 34 अध्याय के 14 में पढ़ते हैं, और उन्होंने उनसे कहा, हम यह नहीं कह सकते किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे तो हमारी बदनामी होगी। मित्रों, यहां पर इस घटना के बारे में एक बात है जो मुझे परेशान करती है कि वास्तविक बदनामी जो बलात्कार का पाप है उसे छोड़कर ये लोग अंतर जातीय अर्थात खतना रहित लोगों के साथ विवाह न करने की व्यवस्था के आधार पर बातचीत कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जबकि इन्हें बलात्कार के पाप को आधार मानकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। हम उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 15 से 17 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हम केवल इस शर्त पर तुमसे सहमत होंगे यदि तुम हमारे समान बन जाओ, अर्थात तुम में से एक एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी पुत्रियां विवाह में तुम्हें दिया करेंगे और तुम्हारी पुत्रियां अपने लिए लिया करेंगे और तुम्हारे साथ बसे रहकर एक जाति के हो जाएंगे, परंतु यदि तुम खतना कराने के लिए हमारी नहीं सुनोगे तो हम अपने पुत्रों को लेकर चले जाएंगे। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि याकूब के पुत्रों ने उनसे विधि के अनुसार खतना कराने के लिए कहा। आज बहुत से लोगों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। मैं एक नवयुवक जोड़े को याद करता हूँ जो एक पुरोहित के पास सलाह लेने के लिए आए, और उन्होंने उससे निवेदन किया कि वह उन्हें विवाह के सूत्र में बांध दे, परंतु पुरोहित उन्हें विवाह के बंधन में नहीं जोड़ सकता था क्योंकि वह युवक मसीही नहीं था, और लड़की ने कहा कि जब तक वह मसीही नहीं बनता है वह उसे विवाह नहीं करेगी। रोहित ने उस युवक के साथ बातचीत की और उसने युवक से कहा कि वह मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पुरोहित ने प्रार्थना की और उससे पूछा कि तुमने वास्तव में क्या किया, तब उस लड़के ने जो जवाब दिया पुरोहित ने पहले कभी नहीं सुना था। उस लड़के ने इधर उधर की बातें की जो अर्थहीन थी, अर्थात वह सिर्फ बातें बना रहा था। तब पुरोहित ने उसके सामने लड़की से कहा, हे लड़की, मैं इस विवाह को नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह लड़का सही रूप में परमेश्वर को जानता है। उनको ऐसा लगा कि यह पुरोहित बहुत कठोर है और वे वहां से चले गए और किसी दूसरे पुरोहित के पास जाकर विवाह कर लिया। उनकी शादी के पश्चात उसने अपने पति को कलीसिया में आराधना के लिए ले जाने की कोशिश की, परंतु उसके पास एक अच्छा कारण था कि वह कलीसिया में ना जाए। उसने कहा वह उस पुरोहित के द्वारा संदेश को नहीं सुनना चाहता है जिसने उसके साथ में कठोरता का व्यवहार किया था। तब वह दूसरी कलीसिया में जाने के लिए राजी हुआ और वे दोनों उसमें दो या तीन बार गए, और अंत में बड़े स्पष्ट शब्दों में उसने लड़की से कहा, वास्तव में मैं मसीही नहीं हूं। सिर्फ कलीसिया में शामिल होने के लिए किसी विधि को पूरा करने से कोई मसीही नहीं बनता, और यह कहना कि मसीह पर विश्वास करता हूं कहने से आप मसीही नहीं बन जाते। मित्रों, मैंने पाया है कि आज बहुत से लोगों के लिए विश्वास का कुछ मतलब नहीं है। वे सोचते हैं कि सिर्फ सिर को झुका देना ही उनके लिए काफी है। मित्रों, यीशु मसीह पर विश्वास करना वह उद्धार करता है, यह एक अद्भुत अनुभव है। इसके जैसे कुछ भी नहीं है, इस संसार में इससे तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। मित्रों, जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं या उस पर विश्वास करते हैं, तब वो विश्वास आपके लिए कुछ करता है। उसने उस लड़के के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपके लिए करेगा। मार्क ट्वान का अनुभव भी बिल्कुल इसी तरह का था। वह एक मसीही नहीं था, परंतु वह एक सुंदर मसीही लड़की से प्रेम करता था। परंतु जब तक वह मसीही न बने, वह उससे विवाह नहीं कर सकती थी। उसने उस लड़की से कहा कि उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, और इस प्रकार उन्होंने विवाह किया। मित्रों, मार्क ट्वान एक बहुत प्रचलित व्यक्ति बन गया और संसार के बहुत चर्चित लोगों के द्वारा उसका मनोरंजन किया गया। एक दिन जब वह घर वापस आया और उसकी पत्नी आराधना के लिए जाना चाहती थी, उसने कहा, देखो अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कलीसिया में आराधना के लिए जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं मसीही नहीं हूं। इसके कारण वो परिवार एक दुखी परिवार बन गया और निश्चित रूप से उस मसीही लड़की के जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। मित्रों, यह कोई नई बात नहीं है। आज भी हमारी कलीसिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिससे मुझे और आपको सबक लेनी चाहिए कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि एक विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह सूत्र में बंधे। यहाँ पर याकूब के पुत्रों ने कहा, यदि तुम हमारे समान बन जाओ अर्थात खतना करा लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि आप कलीसिया में जुड़ जाते हैं, अपने सिर को झुकाते और सही शब्द का प्रयोग करना जानते हैं और सही बाइबल पद को निकालना जानते हैं, तो आप एक मसीही हैं। मेरी प्रियो, उसका मतलब मसीही होना नहीं है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो आप एक नए या अलग व्यक्ति बन गए हैं, तब ही आप मसीही हैं। अन्यथा परंपरा पर प्रतिदिन से या पालन करने से आप मसीही नहीं बन जाते हैं। आज आपके लिए भी एक समय है कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें, जो आपके पापों को क्षमा कर एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ला सकते हैं, परंतु निर्णय आपको करना है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 34 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, उनकी बातें हामोर और उसके पुत्र शकेम को तर्क संगत प्रतीत हुई, और वह जवान जो याकूब की पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता था, उसने इस काम को करने में विलंब नहीं किया। वह तो अपने पिता के सारे कुटुंब में अत्यधिक प्रतिष्ठित था। मैं इससे सहमत हूँ कि इस समय यह लड़का एक अच्छा और भला काम कर रहा था। अब हम इसके आगे के पदों को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 20 से 23 पद लिखा है, इस प्रकार हमोर उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट आए और अपने नगरवासियों को यह कहकर समझाने लगे, ये लोग तो हमारे साथ मित्र भाव रखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इसी देश में रहकर व्यापार करने दो, क्योंकि देखो यह देश भी उनके लिए बहुत है, तो आओ हम उनकी पुत्रियां ब्याह में ले लें और अपनी पुत्रियां उन्हें दें। वे लोग हमारे साथ रहने के लिए केवल इस बात पर सहमत होंगे कि उनकी भांति हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी सब भेड़ बकरियां और उनकी धन संपत्ति और उनके सब पशु हमारे ना हो जाएंगे? बस हम केवल उनकी बात मान लें तो वे हमारे ही साथ रहेंगे। मित्रों, इस वचन के आधार पर यदि हम कहें तो ये लोग अंतरजातीय विवाह के द्वारा याकूब की सारी संपत्ति को प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात अपनाना चाहते थे, क्योंकि हामोर और शकेम की सलाह नगरवासियों के लिए यही थी कि हम उनकी पुत्रियों को विवाह कर उनकी संपत्ति के अधिकारी हो सकते हैं, अर्थात याकूब की संपत्ति के अधिकारी। तो आइए हम उत्पत्ति 34 उसके 24 पद को पढ़ें। और जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, उन सब ने हामोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मान ली, और जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सब पुरुषों का खतना किया गया। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अविश्वासियों पर खतना जैसा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना या एक बनावटीपन या एक दिखावा था। यह तो ऐसा है मानो आप कलीसिया में आराधना के लिए जाते हैं जबकि आप एक मसीही नहीं हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक दूसरे को धोखा देना है, जिसे हम आगे देखते हैं, जहां शमौन और लेवी हमोर के पुत्र या पुरुषों को तलवार से नाश करते हैं। आइए हम पढ़ें उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 25 पद को। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि जब वे सब दर्द से पीड़ित पड़े हुए थे, तो याकूब के शमौन और लेवी नाम दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार लेकर उस नगर पर अचानक आक्रमण किया और प्रत्येक पुरुष को घात किया। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यह पूर्ण रीति से धोखाबाजी था। शमौन और लेवी दोनों ही दीना के सगे भाई थे और वे बदला लेना चाहते थे, और अपने इस बदला लेने की भावना में वे बहुत आगे बढ़ गए। न ही बलात्कार और न याकूब और न उसके पुत्रों के महान संपत्ति को, जिसे याकूब ने हारान में एकत्र किया था, जिसे हामोर ने हथियाने की या पाने की कोशिश की, परंतु उसके द्वारा वहां के रहने वाले निवासियों के साथ किए गए व्यवहार की असंभव परिस्थिति को प्रकट करता है, और जो कार्य किया वह बहुत ही भयानक था। मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 34 के 26 और 27 पद को पढ़ें। और उन्होंने हामोर और उसके पुत्र शकेम को तलवार से घात किया और दीना को शकेम के घर से निकाल कर ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात करने के पश्चात नगर को लूट लिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बहन को अशुद्ध किया था। मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कार्य में याकूब के अन्य पुत्र भी शामिल थे। उन्होंने हत्या करने के साथ साथ नगर को भी लूट लिया, और यह घटना इस बात को प्रकट करती है कि याकूब के परिवार में लालच था, जो सही नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने नाना लाबान के घर में इन्हीं बातों को सीखा था, जो उन्होंने कर दिखाया। अब हम उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 28 से 30 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां लिखा है, उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और गधे, और नगर और मैदान में जो कुछ था सब कुछ ले लिया, और उन्होंने उनकी सब धन संपत्ति लूट ली, और उनके बच्चों और उनकी पत्नियों को बंधक बना लिया, यहां तक कि उनके घरों में जो कुछ भी था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शमौन और लेवी से कहा, तुमने मुझे इस देश के निवासियों, कनानियों और परिजियों में निंदनीय बनाकर मुझ पर संकट ला खड़ा किया है, और हम संख्या में थोड़े ही लोग हैं। अब वे सब इकट्ठे होकर मेरे विरोध उठ खड़े होंगे और मुझ पर चढ़ाई करेंगे, और मैं अपने घराने सहित सत्यानाश हो जाऊंगा। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि कुछ बातें हैं जो सचमुच में याकूब के जीवन में गलत हैं। हम देखते हैं कि याकूब अपने पुत्र शमौन और लेवी को इस बात के लिए नहीं डांट रहे हैं कि उन्होंने पाप किया है, परंतु वह उन्हें अपने नाम को बदनाम व खराब करने के कारण डांट रहे हैं। मित्रों, कभी कभी हम अपने कार्यों को गलत संदर्भ में लेते हैं। हम केवल उसके प्रभाव के विषय में सोचते हैं जो होने पर है। हमारी कलीसियाओं में ऐसे बहुत से स्त्री और पुरुष हैं जो कुछ बातों के लिए खड़े नहीं होते हैं। क्यों? हो सकता है कि एक जो छोटी भीड़ जिसके साथ वे हैं वो उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, या एक छोटे गुट के साथ जुड़े हैं और वे किसी बात के लिए अड़ने या खड़े होने का साहस नहीं करते, यह सोचकर कि उनके साथ के थोड़े लोग उनका साथ नहीं देंगे। मित्रों, कभी भी यह प्रश्न नहीं रहता है कि यह गलत है या सही। यह प्रश्न होता है कि क्या ये लोग या भीड़ कृपा दृष्टि प्राप्त करेगी या नहीं। परमेश्वर उन मसीहों पर दया करे जो अपने जीवन को अपने चारों ओर के लोगों के द्वारा बनाते हैं, और वे जो निरंतर अपने आचरण के प्रभाव को देखते रहते हैं जो दूसरों पर होने वाला है। वे इस बात को नहीं देखते कि यह सही है या गलत, या मसीही आचरण है या नहीं। परमेश्वर की संतान होने के नाते उन्हें यह करना चाहिए या नहीं। मित्रों, यही कारण है कि आज हमारी कलीसिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो समझौता करते हैं। और कोई आश्चर्य की बात या विचित्र बात नहीं है कि हमारे समाज में बहुत से लोग हतोत्साहित हैं और दुखी जीवन जी रहे हैं। मित्रों, सत्य के लिए खड़ा होना एक अद्भुत बात है या एक अद्भुत अनुभव है, और जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं तो आपको समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह कितना अद्भुत होगा जब हम सब ऐसा करेंगे। यहाँ पर बेचारा बूढ़ा याकूब मसीही जीवन में या परमेश्वर की संगति में बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उतना नहीं बढ़ पाया था जितना उसे बढ़ना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि उसके पुत्र अपना बचाव करते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 34 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं। परंतु उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसा वेश्या के साथ किया जाता है। मित्रों, वास्तव में यह एक अच्छा प्रश्न है, और मैं कहना चाहूंगा कि यदि वे न्याय को अपने हाथ में ही लेना चाहते थे तो सबसे पहले उन्हें उस लड़के शकेम की बात को सुनना था और अपनी बहन को उससे विवाह करने देना चाहिए था। मैं समझता हूं कि परिस्थिति के मुताबिक यही सबसे अच्छा उत्तर होता, परंतु सबसे बेहतर उपाय तो नहीं कहूंगा, हाँ, पर यह भी किसी रीति से सही तो नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से यह वहां के निवासियों की हत्या करने से तो अच्छा ही था। अब यहां पर कोई भी बहाना नहीं चलेगा और मेरे पास भी बचाव का कोई उपाय नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। लेकिन यहां पर मुझे और आपको एक बात समझना चाहिए जो हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 से 21 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, प्रियो अपना बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगह दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा, परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मित्रों, आज एक मसीही को रोमियो के पत्र उसके 12 अध्याय की नीति पर चलना चाहिए। जिस क्षण हम बदला लेने की कोशिश करते या बदला लेते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम विश्वास के द्वारा नहीं जी रहे हैं या चल रहे हैं, और हम यह कह रहे हैं, परमेश्वर इस कार्य को कर सकेंगे या नहीं, अर्थात हम भरोसा नहीं करते हैं। मित्रों, जो कुछ भी हो, मैं नहीं सोचता कि आप याकूब को और निश्चित रूप से उसके पुत्रों को इस समय इस आत्मिक स्तर तक एक ही समय में ला पाएंगे, परंतु जो भयानक काम उन्होंने किया है आप उसका न्याय भी नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने यह काम अपनी बहन के प्रति भावनाओं में आकर किया है और परिवार की बेइज्जती के कारण किया है। अब यहां पर याकूब पूर्ण रूप से देखना आरंभ कर रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं उसके घर में प्रवेश कर रही है, सिर्फ थोड़ी ही नहीं परंतु बहुत सारी। मित्रों, यहां पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अध्ययन में हम इसके आगे के विचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु की निकटता में आप बने रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।